Iri du guang Balochistanent. آج 27 ستمبر اتوار 2009 ہے. معززین سامعین, گوانگ کی ٹیم کی طرف سے آداب. آج ہم نے گلگت بلتستان کے حالات جاننے کے لیے بلتستان نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے برہان اللہ صاحب سے گفتگو کی, جو کہ ہمیں وہاں کل کے حالات اور اس کے پس منظر کے بارے میں بتائیں گے.
جی, جہاں تک گلگت بلتستان کے حالات کا تعلق ہے, یہ کشیدگی جب سے میجر براؤن اور اس کے ٹولے نے ہماری آزادی کو سلف کر کے پاکستان کے ساتھ اس کا نتھی کر کے, اس کے بعد سے انہوں نے جان بوجھ کے یہ فرقواریت کو ہوا دی, اور جو پاکستان سے آئے ہوئے حکمران تھے سردار عالم, اس وقت کے یہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ, اسی روز سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور اس نے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے یہاں کے بعض نادان دوست ان لوگوں کے ہاتھوں اہلائے کار بنے رہے, تو اس کا سلسلہ ہوتے ہوتے 71 تک آیا. پھر بٹھو کے دور میں بھی یہ مذہبی فرقواریت کو ہوا دی گئی. پھر اس کے بعد 88 میں ضالحق کے دور میں تو باقاعدہ یہاں کے لوگوں کو مذہب کے نام پہ لڑانے کا پورے کھلے عام ایک یہ چھوڑ دی گئی, جس کے بعد اس کا خیمیزہ یہاں کے باسی بھگت رہے ہیں. اور ہوتے ہوتے آج تک جو حالات ہیں, یہ جہاں پہ غیر آئینی قابض طاقتیں ہیں, انہی کی مرہون منت اور ان کے جو اعلی کار یہاں پہ ہے, اور جو وہ لوگ جو یہاں کے حالات کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہوئے بھی ان سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے چشم پرسی کرتے ہیں, اس کا خیمیزہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. جہاں تک یہ جو حالات جہاں آئے روز پیدا ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے باسیوں کے دشمن, اس علاقے کے کوئی خیر خواہ یا ایسا کوئی آدمی اس میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے. البتہ وہ لوگ اس میں ملوث ہیں جو اس علاقے کو ترقی, اس علاقے کی یو این سی آئی ٹی کے قراردادوں کے تحت جو حق ایکول سٹیٹس جس کو مظفر آباد سری نگر کو حاصل ہے, وہ گلگت بلتستان کو بھی ہو, ان تمام راستوں کے سامنے یہ اس کو ہم رکاوٹ سمجھتے ہیں. اور یہ جہاں تک جو گورنر کا تقرر ہو گیا ایک نام نہاد پیکج کے بعد, ہم سمجھتے ہیں یہ کہ یہ 62 سال پہلے جس گورنر گنسارا سنگھ ڈوگرہ راج کو ہم نے فارغ کر دیا تھا, انہوں نے ایک حساب سے اس کی ریپیٹ کی ہے. آپ کے گورنر اور اس وقت کے گورنر میں ہمیں کوئی فرق نہیں, کیونکہ اس کا واضح ثبوت یہ ہے, کوئی گورنر بن کے آئے, کوئی منسٹر بن کے آئے, یا کوئی چیف ایگزیکٹو بن کے آئے, جو بھی باہر کے قابض طاقتیں ہیں یا وہ اپنے آپ کو یہاں کے وہ ہولی سولی یا والی وارث سمجھے ہیں, یا یہاں کے اپنے آپ کو اختیارات کا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں, انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دیکھنے پڑے ہیں. اور اس کے لیے جب بھی نیشنلسٹ کوئی بہتری کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, تو یہاں کے لوگ جو حق پرستوں کے مخالف جو ہیں قابض طاقتیں, وہیں پروپیگنڈا کرتی ہیں اور ہمارے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتی ہیں. حقیقت میں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ لوگوں میں تمیز ہے. البتہ کچھ لوگ ہمارے ایسے دوست جو نہ سمجھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے بھی غلط استعمال ہوتے ہیں, اور دنیا کو اگر یہ کہیں تو کہ اس طرح کے حالات ہیں, تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہاں تک گلگت بلتستان کے موجودہ جو حالات ہیں, اور اس کے علاوہ یو این سی آئی ٹی کی قرارداد کے تحت جو اختیار ہمیں ملنا چاہیے, جس کا پاکستان اور انڈیا دونوں دستخط کنندگان ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے, اور مصنوعی پیکیجز اور مصنوعی قسم کے وہ چیزیں دیکھ کے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں سے بعض ہمارے نہ سمجھنے والے لوگ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس میں آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن یہ جو ان کے حربے ہیں وقتاً فوقتاً پیکیج کے نام پہ, پلان کے نام پہ, گورنر سائڈر کے نام پہ, یہ آہستہ لوگ سمجھیں گے, और हम समझते हैं कि ये इनका ये जो एक सिलसिला है लोगों को सबस बाग दिखा के अपने वो गैर आज कब्जा जारी करने का जो उनके ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह नाकाम हो।
जी बुरहानुल्लाह साहब, आप कल के जो हंगामे हुए थे उसमें लोग गम गुस्से से सड़कों पर निकल आ रहे हैं और कुछ लोग मारे गए, इस सिलसिले में आप कुछ बता सकते हैं?
कि ये जो लोग नाराज हैं, जो लोग नाराज हैं वो तो सियासी तौर पे अपने आप अपना मौकफ एक जमहूरी अंदाज में लॉजिक के साथ पेश कर रहे हैं। ये जो हरकतें करते हैं हम समझते हैं कि अगर ये किसी मजहबी फिरके के नाम लेके करते हैं या किसी और एजेंडे के तहत करते हैं, ये लोग इस धरती के खैरख्वाह नहीं अलबत्ता यहाँ के जो हमदर्द हैं उनके के लिए ये मसाइल पैदा करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे खुदा न खासा ऐसा कोई वाकया होता है या वो कराया जाता है तो किसी एक सेक्ट का बंदे को नुकसान पहुंचे तो ये रंग दिया जाता है कि ये फलां सेक्ट के किसी ग्रुप ने किया, इसकी वजह से हालात आपस में वो फिकवारियत का रंग अख्तियार कर जाते हैं और ये चीज इन ताकतों को सूट करती है जो यहाँ पे काबिज हैं और वो लड़ाओ और हुकूमत करो के तहत दार को तूल देते हैं। यहाँ तक कल जो धमाका हो गया कोई दहशत साख बम किसी स्टेशनरी के दुकान में फेंका गया था, इसमें कोई चार वहाँ के मुलाजिम समेत मालिक जख्मी और एक जवान शहीद हो गया है। इसके अलावा पुलिस और मुजाहिरीन में फायरिंग के तबादले में भी एक पुलिस जान बहक और एक जख्मी हुआ और फिर किसी और जगह में एक छोटे जवान नौजवान लड़के को भी मार दिया गया और साथ एक पुलिस वाले भी हलाक हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये इस वक्त पुलिस वर्सेस पब्लिक की जो लड़ाई है ये भी एक गलत रंग अख्तियार कर गई है। इस पर भी हमें अफसोस इस बात पे है कि इसको भी सेक्ट वाइज वो उसका वो रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी, दफा 144 नाफिस है इस वक्त। ओवरऑल जो शहर है इसका वो मजमी तौर पे यहाँ एक हुक आलम है, तमाम दुकानें कारोबारी और ऑफिस स्कूल तो खैर आज इतवार है बंद है। ओवरऑल मार्केट भी इसी हालात की वजह से ट्रैफिक बहुत कम है रोड में और लोग इस तरह के हालात से बेजार हैं। वो इसलिए बेजार हैं कि जब हम कोई नेशनल वाइज कोई कदम उठाया जाता है या कोई काम करने के लिए जस्तजू की जाती है तो उनके सामने ये रुकावटें खड़ी करके दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ के लोग आपस में लड़ते हैं और ये हम समझते हैं कि ये इस कौम के खिलाफ बहसित मजबूर इस कौम के मफादात को नुकसान पहुँचाना और गलत रंग देना और लोगों को आपस में उलझा के रखना ये इस काबिज ताकतों का ही किया दरा है।
जी जनाब बुरहानुल्लाह साहब, आजकल हमारे बलूचिस्तान में भी ऐसे आर्म स्ट्रगल शुरू हुई है कि उनका उन पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि वहां पर भी ऐसे नए आर्म जो हैं मुसलाना तंजीमें जो हैं छोटे मोटे जो हैं वहां पर जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ जब लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ वो मुसलाना जदोजहद की एक इब्तिदा हो सकती है, जिस तरीके से पुलिस वाला मारा गया, एयरपोर्ट पर हमला हुआ, तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं?
जनाब शुरू तो मैं इस बात की फिर वजाहत करूंगा कि हम जब वो कोई एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे आपको कौम को बहसित कौमी इत्तेफाक राय कौम को उसमें एक प्लेटफॉर्म में लाने की हम जब कोशिश करते हैं तो ये जो फिरकवारियत या कोई और रंग देके हालात खराब किए जाते हैं तो इससे कौम परस्तों का रास्ता रुक जाता है। जहाँ तक आपने कहा कि मुसल्ला जद्दोजहद, मुसल्ला जद्दोजहद मसले का हल ये है कि लोग अपने कौमी मसले को समझे, आपस में जद्दोजहद इत्तेफाक राय से इत्तेहाद से एक प्लेटफॉर्म में आके कोई चीज से हासिल करे तो वो लॉन्ग टर्म होगी और उसके बेनिफिट्स कौम को फॉर एवर मिलेंगे। नहीं, इस बारे में मैं फिर वजाहत से आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे कोई हालात आ गए, कोई मेरे घर पे हमलावर हो या कोई हमारे धरती के ऊपर बंदों की नोक पे जो कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं अगर जबरदस्ती की बुनियाद पे हो गई तो उसके रद्द अमल तो हो जाता है। उसका एक छोटी सी मिसाल मैं ये दे दूंगा कि अगर किसी के उसमें 88 में उस वक्त लोगों ने हथियार उठा लिया, वो इसलिए उठा लिया कि वो उन लोगों की मजबूरी थी, और मजबूरी के बाद जब वो लड़ पड़े तो इससे साबित हो सकता है कि साबित होता है कि हम असला भी उठा के लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बेहतर तो मजमू कोशिश ये होती है कि जब हम ग्राउंड में कौमी सतह पे एक जहनी इंकलाब लाएंगे फिर उसी को हम मौसर समझते हैं। जहाँ तक बैनुल अक़वामी बरादरी है तो हम बैनुल अक़वामी बरादरी से यही मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से UNCRPD के तहत करारदादों के तहत अमल दरामद क्यों नहीं कराते हैं? क्या वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? सिर्फ वो उनको तो अफगानिस्तान के मामले अपने इंटरेस्ट में नजर आते हैं, उनको मशरकी तैमूर का मसला नजर आता है, गिलगित बल्तिस्तान के मसले के ऊपर वो खुद हमारी जद्दोजहद के बावजूद, हमारे आवाज उठाने के बावजूद आलमी बरादरी भी तो वहाँ अपने मफादात यहाँ उनको सूट करते हैं, वहाँ कुछ आवाज उठाते हैं। ये आलमी बरादरी खासकर UNO का किरदार भी दोहलापन है, वो जिस तरफ उनको अमेरिका खींचता है उस तरफ जाते हैं। बाकी एक चीज उनके टेबल एक मुकदमा गुज़िश्ता 62 सालों से पड़ा हुआ है, वो उनको उस पर अमल दरामद कराने के लिए पाकिस्तान इंडिया पे दबाव डाले और इस मसले का हल निकाले। तो इस बारे में हम कहते हैं यहाँ हमारी थोड़ी बहुत जद्दोजहद है और पहले भी रही है, या फिर जो हमारा बुनियादी हक है ये देने में तो उनका भी किरदार है ना, वो तो बिल्कुल कोई टस से मस नहीं है। इसी जद्दोजहद के सिलसिले में 47 में हमारे आबाओ अजदाद ने जहाँ जंग लड़ी, इस इलाके को आज़ाद कराया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के उसी मेजर ब्राउन और उन्हीं की उस ग्रेट गेम के तहत ये इलाके वापस पाकिस्तान के खाते में चले गए। असर नफूस इधर कायम करना चाहेंगे तो ये माजी की तलख तजुर्बात को देख के हम ये समझते हैं कि एक जमहूरी अंदाज में हम जद्दोजहद करेंगे और कर रहे हैं। अगर इससे को रोकने की कोशिश की गई तो लामहला हर चीज का तो रद्द अमल होता है। अगर कोई हमें दीवार से लगाएगा तो हम हाथ पांव तो मारेंगे।